चलिए तीसरा नुक्ता पढ़ते हैं। माशरे में नज़्म और डिसिप्लिन पैदा करना यूं भी इस्लामी तहरीक का एक लाजमी तकाजा था, लेकिन मैदान जंग में तो मशीनी नज़्म के बग़ैर दुश्मन से बखूबी ओहदा बरा होना कतन नामुमकिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलीन मार्के से ही जंगी नज़्म की तरबियत दी थी। अब तो तजुर्बात वसी हो चुके थे, इसलिए मार्का खंदक में नज़्म का पहलू खासा मजबूत था। खंदक की खुदाई भी इंतहाई नज़्म और तकसीम कार के साथ की गई थी। फिर इसकी निगरानी के लिए और महाज पर काबू रखने के लिए जा बजा चौकियाँ कायम की गईं और पहरे की बारियाँ मुकर्रर थीं। इसके अलावा मुस्लिम सिपाहियों के दरमियान बाहमी शिनाख्त के लिए कोड मुकर्रर थे। आपको पता है कि हर बात तो नोट हो रही होती है जंग में, तो अगर आप एक कमांडर अपने फौजी को बुलाता है और कुछ कहता है तो उसके जवाब में दुश्मन भी वही बात सुन लेता है तो गलत है, फिर वो उसको नुकसान होगा। तो इसका ये तरीक़ाकार क्या करते थे, कोड रखते थे। बहुत सारे कोड्स हैं, आप पढ़ेंगे तहरीक मखदूम में अगर तो आपको मिलेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोड से मुख्तलिफ जंगों में, और सहाबा को समझ आ जाती थी, दुश्मनों को नहीं पता चलता था। फिर इसी तरह से आप देखिए कि डिसिप्लिन की बात इसमें आप समझिए, जो कौम जंग में डिसिप्लिन रहे, मुझे बताइए अमन में क्यों नहीं रहेगी। जंग में तो डिसिप्लिन नहीं कायम रह सकता, उनका वहाँ भी मौजूद था। फिर इसके बाद देखिए कि इसके अलावा मुस्लिम सिपाहियों के दरमियान बाहमी शिनाख्त के लिए कोड मुकर्रर थे। बनु कुरैज़ा की गद्दारी की तस्दीक करके वफद वापस आया तो इसने भी इशाराती तरीक से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। अरकाने वफद ने सिर्फ इतना कहा, अज़लो कारा, किस किस को समझ आ गया लफ्ज़ अज़लो कारा से क्या था, यानी अल्लाह के नबी को खबर मिली थी कि बनु कुरैज़ा ने गद्दारी कर दी है। वो मदीना में थे, अंदर सिर्फ उन्हीं से ख़तरा था। आपने तहकीक के लिए भेजा, ये भी एक नोट कीजिए, लीडर्स का काम है कोई बात कोई खबर इधर उधर से आए तो पहले रिसर्च कराएं। अब गए सहाबा में से कुछ देखा है, अंदर ही थे देखा है, देखा तो वाकई वादा तोड़ा हुआ था। आके क्या कहते अल्लाह के नबी को, वादा तोड़ दिया? नहीं, क्या कहा, अज़ल वक़ारा, किसी को नहीं याद आ रहा। ये दो वो कबीले थे जिन्होंने गद्दारी की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी बड़ी इन लोगों ने गद्दारी की थी, कितने लोगों को नुकसान हुआ था इससे। सिर्फ उन दो के नाम लिए समझ आ गया कि जो उन्होंने किया था वही इन्होंने किया है। अल्लाह अकबर। मफहूम ये था कि उन्होंने इसी तरह गद्दारी की है जैसे अज़ल क़ारा के लोगों ने मुअल्लमीन के वफद की थी। 70 उलमा और 70 हुफ़ाज़ कराम कत्ल कर दिए थे इन लोगों ने। फिर भी एक मौके पर रात की तारीकी में सहव यानी गलती हो जाने के बायस मुस्लिम सिपाह की दो टोलियों में टकराव हो गया और एक जान भी शहीद हुई। खुदाई का काम शुरू होने से लेकर ता दमे आखिर मुखलिस मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त लिए बगैर मौके से नहीं जाते थे। आज भी देख लीजिए कामयाब कौमें कौन सी हैं दुनिया की जो डिसिप्लिन है। आप अपने मुल्कों और बाहर के मुल्कों को किस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो फिर हम अपने दीन के नाम पर और अपने ज़ाती मामलात में क्यों नहीं कर पाते। अल्लाह ताला हमें बना दे ऐसा। अगला नुक्ता देखिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु गितफान के साथ मुसालहती मुआहदा करने की जो राह निकाली थी, इससे ये हिकमत अखस होती है कि तहरीक इस्लामी को शदीद मुखालफतों से बचा निकालने और दुश्मनों का ज़ोर घटाने के लिए अगर कभी कदम पीछे हटाना पड़े या झुकाव इख्तियार करना पड़े तो ये कोई नामुमकिनुल तसव्वुर चीज़ नहीं, यानी इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एक लंबी कशमकश करते हुए जिन मुख्तलिफ अनासिर से साबका पड़ता है, इनसे बारहा ऐसे मामलात करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तहरीक इस्लामी की यही वो पेचीदा ज़रूरियात हैं जिसे चलाने के लिए हिकमत को लाजिम ठहराती हैं। हालात को समझना और इनमें से बेहतरीन रास्ता निकाल लेना एक बसीरतमंद क़्यादत की लाजमी सिफत होनी चाहिए। इसको हाईलाइट करें जी, हालात को समझना और इनमें से बेहतरीन रास्ता निकाल लेना एक बसीरतमंद क़्यादत की लाजमी सिफत होनी चाहिए। ऐसे लोग जो असूलों की तरह तरीक़ेकार के दायरे में भी एक ही फार्मूले को हर किस्म के हालात में इस्तेमाल करना चाहें, मुश्किल ही से तारीख में कोई बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं। देखिए अल्लाह शर में से खैर निकालता है ना, लीडर्स का भी यही काम है। जब मोरल डाउन हुए हों तो उसको अप किया जाए, जब हौसले टूटे हुए हों तो उनको बुलंद किया जाए, बिखरे हों तो उनको यूनाइट किया जाए। सिर्फ यही काम होता है, काम सारा दूसरे करते हैं। और बेस्ट लीडर कौन होता है जो खुद करता नहीं है कुछ, क्या करता है, कराता है। अल्लाह के नबी के साथ दोनों ही हालात थे, करते भी थे मौका पड़ने पर और करवाते भी थे। और आप देखिए कैसे हालात में जब के दुश्मन सर पे पड़े हो, अल्लाह अकबर, इतनी बातें, इतनी अफवाहें उठती, इतनी चहमगोई होती, कोनों में खड़े सहाबा बातें कर रहे होते हैं, ये अल्लाह के नबी की समझ ही नहीं आती, ये क्या कर रहे हैं, ये इनको समझ नहीं, भला इनको नहीं पता। आप देखिए कि सहाबा की जुबानें सुई से सी हुई थी, सुई धागे से अगर किसी का मुंह सी दे ना, जिसको कहते हैं जिप द माउथ, ये इस पे कमेंट भी नहीं देते थे। और जिन मुनाफिकों ने कमेंट दिए कि पढ़िए सूरह तौबा, उनके कमेंट्स भी अल्लाह ने कुरान में लिख दिए कि एक तो जाते नहीं थे, करते थे तो मारे बांधे और कोनों में खड़े होकर बातें करते थे। तो याद रखिए, किसी भी तहरीक को नुकसान पहुंच जाती हैं बातें, एक्स्ट्रा बोलना और एक्स्ट्रा सुनना। आप सुनना छोड़ दें, अगला बोलना छोड़ देगा। आप कहें भाई मैं नहीं इसमें हिस्सेदार होती, क्या पता, बस आप देखिए, आप यहाँ पढ़ने आई, मिसाल है, अल्लाह आपको लाता रहे, आप कुरान पढ़ रहे हैं, बाहर बर्फ़ है या क्या है, आप ज़रा किसी से जिक्र तो करें, देखिएगा फिर आपको जो बातें सुनाएंगे, सोच के निकलो, टांग टूट जाएगी, फिसल जाओगे, ये होगा। और अगर आप 50,000 करोन की मंथली कोई जॉब कर रहे हो तो कभी नहीं कोई कहेगा, वो कहेगा नहीं टांग लगवा लेंगे, जाओ काम करो, वैसे भी फ्री अलाउंस है। दीन के साथ सौतेलापन, हम दीन के साथ सौतेले हैं, हमारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आ जाए, हमारा दुनिया का काम आ जाए, हमारा दिमाग ही घूम जाता है, हम खड़े भी हैं तो उल फुल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है, क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा या डॉक्टरों को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सीरियस लेते हैं ना। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लेना चाहिए, मेरा मकसद ये कहने का नहीं, यानी असल बात प्रायोरिटाइज है। एमरजेंसी जब तक ना लगाएंगे अपने ऊपर, हम कभी जम नहीं सकते, किसी मामले में भी नहीं जम सकते। तो जिसको तो सारी ज़िंदगी फॉलोअर रहना है, वो तो ढीला रहे, कोई बात नहीं, अजर उनका भी बड़ा इंशाल्लाह, लेकिन जिनको आगे बढ़ना है ना, उनको फिर अजीमत के रास्ते पे चलना पड़ता है। कई ज़िंदगी में ऐसे मौके आएंगे कि आपको ख़ुद भी नहीं समझ आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो अल्लाह के नबी ने ये करके दिखाया। ये अलग बात है कि नबी सल्लम के लिए इस मुसालेहाना तजवीज़ का असल मुहरक यह एहसास था कि कहीं अनसार मदीना ये महसूस ना करें कि इनके सर नाकाबले बर्दाश्त मुसीबत आ पड़ी है। बात समझे, जब उन्होंने एक मुहाजर को अपने घर जगह दी, एक अनसार ने, भाईचारा हुआ तो खुशी से दिया था ना, सबको पता ना ख़वात मदीना, एक अनसार एक मुहाजर, भाई भाई भाई। अब ये ऐसे ही समझे, ये जुमला पढ़ते हुए मुझे ऐसे लगा किसी ने कहा कि मैं आपके घर आके एक हफ़्ता रह सकता हूँ, आप कहते कोई बात नहीं, दो लोग हैं आके बैठ जाएंगे, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, जो हम खाएंगे वो भी खा लेंगे, जो हमारी हैसियत है। पर अगर वो एक हफ़्ता आपके घर आएं और साथ उनके 10 मेहमान और 4 दफ़ा और उनके मुतालबे अब हमें उधर ले जाएं, तो मेहमान भी सोचेगा ना कि आखिर मैंने घर वालों के सर पे मुश्किल तो नहीं डाल दी। तो ये कितनी प्यारी बात थी अल्लाह के नबी की कि मदीना वाले कहीं ये ना सोच लें कि हमने ओके करके जान फंसा ली। और याद रखें, किसी पे उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो बर्दाश्त करे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने मेज़बान को रुसवा ना करो, क्या मतलब, किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं ना, इतने मुतालबे और इतनी अगले की मुश्किल ना कर दो कि वो बेचारा ना कर सके और गुनाहगार हो जाए। तो ये भी एक सबक इधर से हमें मिला। आपने चाहा कि इनकी तरफ से किसी ऐसे इजहार से पहले ही हल निकाल लिया जाए, मगर औसो खजरज के सरदारों ने मजबूती दिखाई और आपको तसल्ली हो गई। वो भी ठुके हुए थे, हालांकि उन्होंने मक्का वाली मारे नहीं खाई हुई थी, लेकिन दिल ठुका था। बस ये करें, नया हो या पुराना, दिल ठुक जाए, कईयों के फौरन ठुक जाते हैं, पहले दिन दिल ठुक जाते हैं, कईयों के साल हर साल में नहीं ठुकते, वो रोड़ा बन के इधर से उधर अटकते हैं। जब दिल में ईमान चला जाता है तो दिल वाकई जम जाता है। दुआ करें अल्लाह हमारे दिलों को जमा दे। इस मुसालेहाना तजवीज़ को आखिरी तौर पर अमल में ले आने से कबल नबी सल्लम ने अंसारी सरदारों से मशवरा करके असूल शुराइत, शुराइत क्या होती है, शूरा, मशवरा करना, आपस में करना, और अल्लाह के नबी की सुन्नत है मशवरा करना, असूल शुराइत को मुस्तहकम कर दिया। मैदान जंग में भी आपने बतौर खुद फैसले का बड़ा कदम नहीं उठाया। तो फिर अच्छे लीडर कौन होते हैं, जो काम मशवरे से करते हैं। बिल्कुल, नाइम बिन मुसूद ने दुश्मन में फूट डलवाने का जो पार्ट अदा किया वो नबी सल्लम की मंजूरी से किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त अल हर्बु हुदअतु के कुलिये के तहत की। ये एक मुहावरा है, ज़रबुल मिसल है, अल हर्बु हुदा, जंग तो धोखे का नाम है, वो जिसको हमारे यहाँ पता नहीं इसमें मोहब्बत कहाँ से ले आई, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, यहाँ से लिया लोगों ने, हमारे देसियों की आदत है कुछ डालने की। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी जंग में एक तौरिये के तौर पे इधर से उधर बात अगर करनी पड़े तो की जाती है, ये मुराद है। اسے یہ نتیجہ خز ہوتا ہے کہ کشمکش اور خصوصاً جنگ کرتے ہوئے مختلف تدبیریں اور چالیں اٹل اخلاقی حدود کے اندر رہ کر اختیار کی جا سکتی ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں اشد ضروری ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر اگر سادگی سے بیٹھے حالات کو دیکھتے رہیے تو ہلاکت تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کی کمزور روایت کو درکنار رکھ دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ نعیم بن مسعود نے بغیر جھوٹ بولے اور بغیر کسی اخلاقی حد کو توڑے بڑی خوبی سے ایک عظیم مہم سر کر دکھائی۔ یاد ہے یہ واقعہ کیا تھا؟ آپ کو تک ایک مہینے تک دشمن باہر، اب آپ امیجن کریں نا ہم سب اندر ہیں، چلیں باہر اگر سردی بھی ہے تو ادھر ہیٹ نارمل ہے نا، گرمی سردی کا رینج ہے، واش رومز بھی اندر ہیں، کچن بھی اندر ہے، اگر بالفرض آج ہمیں 1-2 بجے نہیں، ہمیں رات شام تک بھی رہنا پڑے تو ہمیں کیا پرابلم ہے، لیکن اگر باہر کھلی -2 تھا کل بھی، صبح بھی تھا، اگر اس میں کوئی آ کے کھڑا رہے، اور یہ صرف اس لیے کہ صرف 1 منٹ کھڑا ہونا ہے اور اندر آ جانا ہے، ہو سکتا ہے اس نے جوتا بھی نہ بند پہنا ہو، کپڑے بھی موٹے نہ پہنے ہو، اور اس کو ایک پورا دن کھڑا ہونا پڑے۔ دشمن باہر تھے اور مسلمان اندر تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ نعیم بن مسعود کے ذریعے وہ جو سارے آئے تھے نا جھوٹ کے اوپر جمع ہو کر، ان کے اندر پھوٹ ڈلوا دی۔ انہوں نے جا کر ایک دوسرے کے بعد، بالکل خاندانی سیاست سمجھ لیں، سوچو کیا ہے۔ اور یاد رکھے جو اتحاد اور اتفاق جھوٹ پہ لگتے ہیں نا وہ کبھی نہیں پنپتے۔ وہ سارے بیکار آ کے ملے تھے، وہ سب میں پھوٹ پڑ گئی۔ یعنی وہی بات ہے کہ شادیوں میں کئی لوگ لڑکے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہر شادی کا اینڈ عموماً لڑائیوں پہ ہوتا ہے۔ وہ جو آتے ہیں کسی، کوئی کہتا ہے ہمیں اچھا کمرہ نہیں دیا، کوئی کہتا ہے آپ نے میری خاطر نہیں کی، دو کو ایک جگہ بٹھا دیا، وہ کو پچھلی بات شروع کر کے نکل آتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایسے موقع پہ اللہ کے حکم سے یہ مدد بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کی اور صحابہ کرام کی یہ مدد ہوئی کہ وہ دشمن ہی پھوٹ گئے۔ تو جب دشمن پھوٹ گیا تو پھر اللہ نے مسلمانوں کی مدد اور بھی کر دی۔ ایک اور واقعہ سنیے، بہت پیارا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جو حضور والی ٹولی میں شریک تھے، کہ ایک چٹان کھدائی میں ایسی آئی کہ مجھ سے ٹوٹتی نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے، آپ نے کدال مجھ سے لے کر ضربیں لگائیں، پہلی ضرب لگا کر فرمایا یمن میرے لیے فتح ہوا۔ لکھ لیجئے کہ یہ ساری اس دور کی سپر پاورز تھیں، بڑے بڑے ملک تھے۔ دوسری ضرب پر فرمایا کہ شام اور مغرب میرے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ تیسری بار فرمایا کہ خطہ مشرق یعنی ایران مفتوح ہوا۔ یہ بشارت دو پہلوؤں سے بڑی اہم ہے۔ ایک تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخر تک اپنی تحریک کے آخری مراحل کامیابی کا ایک مستقل تصور رکھتے تھے، اور اس تصور کے حق میں آپ کے دل پر اسلامی القاء بھی ہوتا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ انتہائی ناسازگار حالات میں، جبکہ قوت کم اور مصائب زیادہ تھے، آپ کو یہ یقین رہا کہ یہ ہو کر رہنا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ ہو کر رہنا ہے۔ جس دن آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ سمٹ کر پہاڑ بھی ان کی ہیبت سے رائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ آج کے دور میں ذرا سا اس کو سوچئے، کیا یہ پوسیبل ٹاسک لگتا ہے؟ لیکن اللہ نے جنگوں کے ذریعے امپوسیبل کو پوسیبل کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ یقین مانگی اللہ سے، ہر بات پہ کہا کرے ہو جائے گی، اٹس ایزی، اٹس ناٹ ہارڈ۔ اور نہ ہماری جنگیں ہیں، نہ سردیوں میں باہر کھڑے ہو کر کھدال پکڑنا ہے، اور جان کا بھی خطرہ پھر سب سے بڑا۔ اب دیکھیں جب خوف ہوتا ہے نا بس ہی بندہ کانپنے لگتا ہے، اور اگر سردی بھی ہو ساتھ ریئل میں تو واقعی جان نکلتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام اس وقت بھی جمے رہے۔ ضمناً یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اسلام کے سامنے عرب و عجم مفتوح ہوں گے، مکہ سے لے کر مدینہ تک کتنی بار سامنے آتا ہے، اور اس دور میں ایسا زبان زد عام رہا ہے کہ اس نوعیت کی تحریک اسلامی کے مستقل سلوگن کسی معلوم ہوتی ہے۔ ہم اس پر مفصل کلام کسی دوسری جگہ کریں گے، لیکن یہاں یہ پڑھ لیں ہم کیا کہ اضطراب کی سخت کھڑیوں میں اسی بشارت پر طنز کرتے ہوئے معتب بن قشیر نے کہا تھا کہ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں دلواتے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص مارے خوف کے اجابت کے لیے بھی نہیں نکل سکتا، یعنی ٹوائلٹ جانے تک کی اجازت نہیں ہے، اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم قیصر و کسریٰ اور روم اور ایران کو فتح کریں گے۔ اپنے اوپر لے کر سوچیں، آج ہم مسلمانوں کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے، حوصلے توڑنے والے نہیں، حوصلے دینے والے۔ اس مارکے میں مخصوص حالات کی بنا پر اگرچہ خواتین اور بچوں کو قلعوں میں بھیج دیا گیا تھا، تاہم اس موقع پر بھی خواتین نے اونچے کردار کا ثبوت دیا۔ ایک خاتون رشیدہ कुछ दवाएं और मरहम पट्टी का सामान लेकर महाज पर पहुंची और उन्होंने जख्मियों की खिदमत की। सात बिन माज की मरहम पट्टी भी इन्हीं ने की। खवातीन के एक कैंप के गिर्द एक यहूदी चक्कर लगाता रहा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी वो भी वहीं थी। उन्होंने हसान बिन साबित से जो बीमारी की वजह से वहीं रह गए थे कहा कि इसकी खबर ले डालो। उन्होंने माजरत की तो इस शेर दिल खातून ने खुद ही चूब से, चूब क्या होती है, ये जो छत के ऊपर गार्डर नहीं होते लकड़ी के डंडे, वो थे, चूब उतारी और इसका काम तमाम कर दिया। एक औरत ने जाकर लकड़ी पकड़ कर दुश्मन के सर में मारी और वो वहीं मर गया। फिर इसका सर भी काट कर खुद ही कले से परे फेंका। आप तो मुर्गी नहीं काट सकती। इस वाक्य के बाद किसी दुश्मन को इधर आने की हिम्मत ना हुई। और आपको तो ये सब कुछ किया तो उसके बाद कहा हसान को, जा अब उसकी लाश को पीछे कर, मैं गैर महरम को हाथ नहीं लगाती। हाथ से नहीं मारा था ना, मारा तो दूसरी से था। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा जिस कले में थी इसी में सात बिन मास की वालदा भी मुकीम थी। हज़रत आयशा कले से निकली और कदमों की आहट सुनकर देखा कि सात हरबा हाथ में लिए तेज तेज जा रहे थे। ये शेर इनकी जुबान पर था, क्या, लबिस तो कलीलन तदरिको अलहीजा जमलुन लाबास बिल मौत इज़ल मौती नज़ला। ज़रा रुको कि एक और जवान भी इस मार्के में शरीक हो ले, मौत की जब घड़ी आ गई हो तो फिर मौत से क्या डरना। ये थे जज्बे, कहते थे हम क्यों डरे मौत से, तैयारी की हो तो मौत से डर नहीं लगता बल्कि इंतज़ार लग जाता है कि कब हम वहाँ पहुँचेंगे। असल में सहाबा की ये चीज़ थी कि उनको ये नहीं पता था कि इधर मौत आई तो उधर हमारे सामने पटारे खुल जाने हैं। जो अपनी मर्जियाँ की हुई हैं तो बस दुआ करें कि अल्लाह हमारे मामले सीधे रखे। सात की वालदा ने जब बेटे की आवाज़ सुनी तो पुकारी, बेटा लपक के जाओ, तुमने तो देर लगा दी। ये कैसी माँ थी, आज की मौत कहती हाय मैं मर गई, मेरा बच्चा शहीद ही ना कहीं हो जाए। शेर का मफहूम पूरा हो गया जब साद की रगे अखल में आके तीर लगा, फिर जानलेवा साबित हुआ। एक माँ का बहादराना जज्बा देखिए। यहाँ हजरत माज जो है ना, उनकी ये जो जिसको नफ्स नहीं कहते आप, रगे अखल, इसमें तीर लग गया था तो ज़ख्म जारी हो गया खून। तो इन्होंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मैं अभी नहीं मरना चाहता, मैं बनू कुरैज़ा का अंजाम देख के मरूँगा। फ़ौरन खून रुक गया। और फिर कुछ दिन के बाद जब बनू कुरैज़ा से मामला हुआ, वो हार गए, उधर इनको ही सालस बना दिया क्योंकि ये इनके दोस्त थे तो ये अपने उनकी साथ थे। तो बहरहाल जूँ ही वो मामला पूरा हुआ तो सात बिन माज का खून जारी हुआ, खैमे से बाहर आ रहा है, और उससे फिर हज़रत माज की डेथ हुई। और जो इनकी डेथ पे अगर आगे ना आया तो आपको इस वाक्य के एंड पे सुनाती हूँ कि अल्लाह के नबी ने इनके बारे में क्या कहा। मैं कहती हूँ ये इतना कुछ करके भी देखिए किसी जगह फ़ख्र का शिकार नहीं होते, लेकिन अल्लाह इनकी बात कैसे सुनता। मार के खंदक यानी अहज़ाब के जलजला अफगन हालात में घिरे हुए मुखलिस मुसलमानों ने जब मसाइब का ये तूफ़ान देखा तो वो बेइख्तियार पुकार उठे, ये तो ठीक वही मराहल हैं जिनके पेश आने की इत्तला पहले से अल्लाह और रसूल ने हमें दे रखी थी। सूरत अहज़ाब का तर्जुमा याद आ रहा है, हाज़मा वादन अल्लाह, ये है वो जो अल्लाह ने हमसे वादा किया है, क्या, कि उसके रास्ते में भाग दौड़ करेंगे। मुनाफिक ऐसे वक्त पे परेशान होता है और ईमान वाला कहता है शुक्र है कोई और मौका आया नेकी करने का। वो मराहिल के जिनसे गुजरे बगैर ना दुनिया में गलबा हक मुमकिन है और ना आखरत में जन्नत हाथ आ सकती है। सूरत अहज़ाब में ऐसे पैकरे खास अखलास की तहसीन की गई, यही लोग तहरीक का असल सरमाया कुव्वत है। आपको लगता है कि ये गोश्त पोस्त के इंसान थे, दर्द होती थी इनको, चोट लगती थी, सर्दी लगती थी, गर्मी लगती थी, इनके जज्बात थे। सारी बातों को पढ़ के सिर्फ मुझे तो शर्मिंदगी होती है। वो कहता है ना, तुझे अपने आबा से नस्बत हो नहीं सकती, तू साबित हो सही आ रहा। हम अपने बाप दादा में सिर्फ सहाबा को ही अगर देख लें तो आज के मुसलमान, और उसमें कोई चीज़ नहीं मिलती इल्ला माशाल्लाह, चंद रिचुअल्स के सिवा। तो अल्लाह हमारे अंदर भी वही मान लिया है। फिर दसवीं बात देखिए कि नबी सल्लम के बारे में ये मालूम है कि आपने अपनी जमात को एक मुस्तकिल जुदागाना तहजीब पर उठाते हुए ये कुलिया खूब अच्छी तरह दिलों में उतारा कि मुआशरतों सकाफत के दायरे में दूसरी कौमों और मिल्लतों की तकलीद हरगिज ना की जाए। इसको नोट करें, ये है वो नुक्ता जो मुसलमान को कमज़ोर करता है, और वो है गैरों की तकलीद, इम्प्रेस्ड बाय नॉन मुस्लिम्स, फॉलो करो उनका रंग ढंग, उनका पहनना, उनका बोलना, उनका खाना पीना, इससे एक मुसलमान कमज़ोर होता है। और आज भी देखिए जो चीज़ उनके साथ नहीं फिट होती उसको हम अब दीन से निकालते जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि नई तमदनी कदरें अपने ही असूलों के सांचे में ढाली जाएं اور ہر ثقافتی نقش اپنے ہی مخصوص اسلامی ذوق کے رنگ سے تیار کیا جائے۔ لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے ایرانی طریقہ دفاع کو کھلے دل سے قبول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت کھلتی ہے کہ مادی ذرائع وسائل، عملی فنون یعنی ٹیکنالوجی اور تجربی تدابیر کا لین دین سر انسانیت کے درمیان کھلا رکھا گیا ہے۔ کسی ایک وقت میں جو وسائل، عملی فنون اور تجربی تدابیر زیر عمل آئیں، ہرگز ضروری نہیں کہ ان کو ہمیشہ ہر قسم کے حالات اور ہر دور تمدن میں جوں کا توں لازم سمجھا جائے اور یوں سوچا جائے کہ ان چیزوں پر بھی شریعت یا سنت کا عنوان زیب دے سکتا ہے۔ اس دائرے میں دوسری قوموں اور تہذیبوں سے فائدہ اٹھانا لازم ہے۔ ایک مسلم ریاست اور اس کی قیادت کا دینی فرض یہ ہے کہ وہ وقت کے زیادہ سے زیادہ مؤثر ذرائع کو کام میں لائے، اپنے باشندوں کو عملی فنون میں پیش پیش رکھے اور کامیاب ترین تجربی تدابیر دوسروں سے بھی اخذ کرے اور خود بھی ایجاد کرے۔ یہ آخری نقطہ سمجھ آئے کہ جب ہم غیروں سے کچھ لے نہیں سکتے تو ان کے طریقے پہ خندق کی کھودی، کیونکہ ایران اس وقت مسلم ملک تو نہیں تھا نا، تو کیا پتہ چلا کہ دنیاوی کاموں کے بیچ میں، آپ میں صاحب دیکھیے آج توپیں استعمال ہوتی ہیں، سیل فونز ہوتے ہیں، ریڈارز ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اچھا جی یہ تو غیر مسلموں نے ایجاد کیا تو ہم اس سے فائدہ کیوں اٹھائیں، تو اس کا جواب ہے کہ دنیاوی ترقی سب کے لیے ہے۔ مسلمان دنیاوی ترقی میں غیر مسلموں سے مدد لے سکتا ہے، اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن جہاں اپنے دین کے اوپر حرف پڑتا ہے وہ نہیں۔ کوئی اور واقعہ آپ کو یاد ہے جو غزوہ خندق کے ساتھ ہے اور جو ابھی ادھر نہیں آیا، پیچھے گزر گیا اشارے سے، یا کوئی آپ کے دماغ میں موجود ہو اور آپ شیئر کرنا چاہیں؟ صحابی کا نام، واقعہ، کسی کو نہیں یاد آ رہا؟ اس کو یاد کریں واقعات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی ہی سخت راتوں، سردی کی راتیں تھیں، ایک رات کھڑے ہو کر اعلان کیا، تم میں سے کوئی ہے کہ جا کر دشمن کی خبر لائے، کیونکہ اس وقت یہ بہت اہم ہوتا تھا کہ مطلب سی آئی ڈی کی جائے کہ دشمن کل کے لیے کیا پلان کر رہا ہے۔ کوئی نہیں بولا، سب دبک کے بیٹھ گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنی یخ سردی میں باہر نکلنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا۔ تین بار آپ نے خود سے پوچھا کون ہے کہ جو دشمن کی خبر لے کر آئے، کوئی نہیں اٹھ رہا، اور آپ نے کہا کہ میں اس کو جنت کی اس کو ضمانت دیتا ہوں، اور آخر میں پھر یہ نصیب کس کے میں ہوا، کل تک ڈھونڈ کے آئیں کون تھا وہ، نام میں نہیں بلاتی، اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، کالا کہ نبی میں جاتا ہوں۔ آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ سوار کیا، کوئی ایئر کنڈیشن یا ہیٹڈ اور وہ سیٹوں پہ ہیٹ چلنے والی گاڑیاں نہیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جوں ہی میں اپنے خیمے سے نکلا، اب خیمے تو گرم ہو جاتے تھے، اندر ہیں ویسے بھی چمڑے کے ہوتے تھے، اندر کچھ بیچارے آگ وغیرہ بھی لگا لیتے ہوں گے، لیکن کہتے ہیں کہ جوں ہی میں باہر گیا اور میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مجھے سوار کیا اور میں نے جانا شروع کیا، مجھے سردی کا احساس نہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ارد گرد ایک کمبل پہ لپٹا ہوا ہے۔ پھر جا کر پورے دشمن کا سارے گروہ کا جائزہ لے کے راؤنڈ لے کر واپس آئے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ جیکٹیں تھیں لیدر کی، نہ وولن کپڑے تھے، پیور وول تو تھی نہیں ان کے پاس، اس دور میں بیماریاں بھی نہیں تھیں۔ دیکھیے بیماریوں کو ہم خود بلاتے ہیں، ہم بیماریوں کو خود بلاتے ہیں ایکسٹرا کیئرفل ہو کر۔ گاؤں میں بچے مٹی والا پانی پی جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کا بچہ یہاں سے جاتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ جس چیز کو جتنا بھی آپ سینسٹیولی یوٹیلائز کریں گے، یوز کریں گے، وہ اتنا سینسٹیو ہو جائے گا۔ سخت جان بنے، اپنے بچوں کو رف اینڈ ٹف پالیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔